दसवां भाग काव्य शिल्प। प्रथम, काव्य और कला शिल्प के संबंध में पंत जी के विचार आधुनिक कवि भाग दो में कवि के आत्मकथ्य पर्यालोचन में मिलते हैं। कवि ने स्वीकार किया है कि सत्य शिव में निहित है। इससे स्पष्ट है कि कवि ने वस्तु सत्य की अपेक्षा भाव सत्य की वाणी दी है। इस तथ्य में काव्य शिल्प और काव्य भाषा का सवाल भी जुड़ा हुआ है। आदर्श में जीने वाले कवि की भाषा मसृण भाव संकुल और संस्कार युक्त होती है तथा शिल्प में आलंकारिकता और चित्रमयता होती है। पंत कविता के माध्यम से निरंतर आत्मविकास की ओर गतिशील हुए हैं, इसीलिए उनका काव्य शिल्प भी अधिक से अधिक सूक्ष्म अमूर्त और आदर्शमय होता गया है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में शिल्प के उपादानों की अलग अलग करके परीक्षा की जा सकती है, किंतु परवर्ती रचनाओं में शिल्प विषय वस्तु से ऐसा एकाकार हो गया है कि उसको पृथक करना कठिन हो जाता है। कवि अपनी रचनाओं में भावुकता से बौद्धिकता की ओर गमन किया है, इसलिए परवर्ती रचनाओं में भावुकता से बौद्धिकता की ओर गमन किया है इसलिए परवर्ती रचनाओं में कला के प्रति वैसा आग्रह नहीं है। आधुनिक कवि भाग दो की भूमिका में कवि ने स्वीकार किया है कि वीणा से लेकर ग्राम्य तक अपनी सभी रचनाओं में मैंने अपनी कल्पना ही को वीणा दी है और उसी का प्रभाव उन पर मुख्य रूप से रहा है। शेष सब विचार भाव शैली आदि उसकी पुष्टि के लिए गौण रूप से काम करते रहे हैं। इसके कारण को स्पष्ट करते हुए कवि ने उसी स्थान पर कहा है कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा मानता हूँ और उसे ईश्वरीय प्रतिभा का अंश भी मानता हूँ। कल्पना के सत्य का तात्पर्य आइडियल ट्रुथ से है। ट्रुथ सत्य दो प्रकार का होता है, पहला फैक्चुअल यथार्थगत, दूसरा आइडियल आदर्शगत। कवि ने वीणा से लेकर ग्राम्य तक कल्पना के सत्य को वाणी दी है, फलस्वरूप इनके शिल्प और भाषा के कलागत चारुता है। ग्राम्य की उत्तरवर्ती रचनाओं में कवि शिल्प तत्र और सुकुमार तथा चित्रमय भाषा के मोह से मुक्त हुआ दिख पड़ता है। इन कृतियों में कला के अभाव के संबंध में अपनी टिप्पणी देता हुआ कवि ने लिखा है, विचार और कला की तुलना में इस युग में विचारों को ही प्राधान्य मिलना चाहिए। जिस युग में विचार का स्वरूप परिपक्व और स्पष्ट हो जाता है उस युग में कला का अधिक प्रयोग किया जाता है। द्वितीय, कवि ने उपर्युक्त कथन में संकेत किया है कि उसकी परवर्ती रचनाओं का काल वैचारिक संक्रांति का काल है, जब विचार ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित न हो तब उसमें कला के अभिनिवेश की बात बेतुकी लगती है। इसीलिए वह अपने उत्तरवर्ती रचनाओं वीड़ा लोकायतन आदि में विचार के स्वरूप का संधान करता देखता है। कला के प्रति सचेत होने से विचार के आहत होने की संभावना थी। तृतीय, पंत के काव्य शिल्प के अनेक आयाम हैं। सब आयामों पर समुचित रूप से विचार करने के लिए स्वतंत्र ग्रंथ की आवश्यकता है। प्रारंभ कृतियों में कवि का कलाकार अधिक मुखर हुआ है। इन रचनाओं में गीत और वर्णनात्मक कविता का घुला मिला रूप दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति के उपादानों और कार्य व्यापारों पर कवि अपनी भावनाओं का प्रक्षेप करता है। कवि ने जिज्ञासा, आश्चर्य, समर्पण, आत्मबोध तथा अस्फुट प्रणय के भावों की संबोधन विस्मयबोधक वर्णन आदि के द्वारा प्रकट किया है। इन रचनाओं में गीत को अनुमति तो मिलती ही है, पर वस्तुगत वर्णन की मुखरता के कारण गीत के अन्य तत्व तिरोहित हो गए हैं और कविता वर्णनात्मक हो गई है। प्रकृति और मानव दोनों के व्यापारों की संयुक्त व्यंजना करने का आग्रह होने के कारण रचना में कलागत भंगिमा आ गई है। चतुर्थ, पंत जी अप्रस्तुति के माध्यम से वस्तु को सजाने में अत्यंत निपुण हैं। परंपरागत अप्रस्तुतियों का स्वल्प व्यवहार उनकी प्रारंभिक कृतियों में मिलता है। आगे चलकर कवि मौलिक अप्रस्तुत की सर्जना में नैपुण्य प्राप्त कर लेता है। मूर्त अप्रस्तुत के लिए अधिकतर अमूर्त अप्रस्तुत की नियोजना करके कवि ने वस्तु को भावमय और सुंदर बनाना चाहा है। उदाहरण के लिए छाया मूर्त होते हुए भी अपनी अस्पष्टता के कारण अमूर्त है, किंतु कवि उसके लिए प्रयुक्त अप्रस्तुत अमूर्त तो रखा ही है, उसे दोहरे रूप से अमूर्त बनाकर अमूर्तता को अत्यंत सघन कर दिया है। यथा पछतावे की परछाई, मदिरा की मादकता, वृद्धावस्था की स्मृति आदि आदि। कहीं कहीं कवि ने काव्य विस्तार के लिए वस्तु के किसी प्रकार संबंध न रखने वाले अकलात्मक अप्रस्तुतों का भी प्रयोग किया है। इसमें कवि की दूरारूढ़ कल्पना का तो परिचय मिलता है, किंतु कविता का भी मध्यम पड़ गया है। जैसे छाया को दर्शन की अति जटिल ग्रंथ के समान कहना। पंचम, कुछ कविताओं में पंत जी ने स्वयं प्रकृति के उपादानों द्वारा आत्मवर्णन कराया है, यथा बादल शीर्षक कविता। ऐसा करने से प्रकृति चित्रण अधिक सजीव और मार्मिक हुआ है। प्रारंभिक कविताओं में कवि ने शब्दालंकारों का प्रयोग कम किया है, अर्थालंकारों में भी उपमा की अतिशयता है। रूपक और उत्प्रेक्षा का भी प्रयोग हुआ है, जिनमें रूपक के प्रयोग बड़े सुंदर हैं। सांग रूपक के निर्वाह में कवि कुशल है। शब्दालंकारों में अनुप्रास और सबंग यमक का सन्निवेश स्वभावतः हो गया है। परवर्ती रचनाएं शब्दालंकार से सर्वथा विरहित हैं तथा अर्थालंकार भी अत्यल्प है। खष्ट, पंत जी की कुछ कविताएं काव्य कला के दृष्टि से संपन्न हैं, यथा परिवर्तन, एक तार, नौका विहार आदि। परंतु कुछ कविताओं में गद्यात्मक सादगी और सहज वार्ता का रूप दिखाई पड़ता है। कवि ने वस्तु की प्रकृति के अनुसार उसे कलात्मक अथवा सादे रूप में चित्रित किया है। कवि की मध्यवर्ती रचनाओं में काव्य शिल्प वस्तुनिष्ठ और यथार्थोन्मुख हो गया है, जिससे कुछ रचनाओं में वस्तु और शिल्प के बीच की दूरी समाप्त प्राय है। यथा ग्रामीण अंचल में सांझ के झुरपुटे का यह वर्णन। बाँसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टुट टुट। कवि की प्रगतिवादी ढंग की रचनाओं ताज आदि में गद्यात्मक शैली देखी जा सकती है। यहाँ कवि ने वैचारिक आक्रोश, तर्क वितर्क और उपपत्ति द्वारा पाठक की सहानुभूति को कुरेदना चाहा है। युगांत की बापू के प्रति शीर्षक कविता अभिनंदनात्मक है। बिंबात्मकता और चित्रमयता कवि पंत के काव्य शिल्प के प्राण हैं। उनके चाक्षुष बिंब बड़े चटक और प्रभाव उत्पादक हैं। शब्दों के विशेष संयोजन, संयत विन्यास से और यति में हेर फेर करके वस्तु का चित्र उपस्थित करने में पंत जी सिद्ध हस्त हैं। अनुरणात्मक शब्दों का प्रयोग चित्र में प्राण का संचार कर देता है। झंझा में नीम शीर्षक कविता इसका अन्यतम उदाहरण है। सप्तम, चाक्षुष बिंबों में से कुछ कवि की गहरी सहृदयता के परिचायक हैं। सेम के बीच में से अंकुर निकलने के बाद छोटे छोटे पत्ते किस उल्लास से ऊपर उठना चाहते हैं, इसके लिए उसने डिंब तोड़कर सद्यजात शिशु सावक का बिंब प्रस्तुत किया है, जिसमें धर्म साम्य का अनोखा सौंदर्य है। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। पंत जी के बिंब बहुत अमूर्त और सघन नहीं होते, वे अधिकतर इकहरे और रिज होते हैं। यही कारण है कि सामान्य पाठक भी बिंब की अर्थवतः सहज ही ग्रहण कर लेता है। पंत जी की अधिकतर कविताएं भीतर से वस्तु परक हैं, उनकी बाह्य सतह आत्म परक है। इसे हम कविता की मय शैली कह सकते हैं। इस शैली को अपनाने का परिणाम यह हुआ कि पंत जी की कविताएं हमें सहज ही आत्मीय लगती हैं। कुछ एक रचनाओं को छोड़कर उनकी कविता में नाटकीय तत्वों का अभाव ही कहा जाएगा। परवर्ती प्रयोगवादी ढंग की रचनाओं में आत्मलीनता और कथ्यगत अमूर्तता की प्रवृत्ति मिलती है। कुछ स्थलों पर जहाँ कवि ने स्पष्ट नीति कथन या उपदेश किए हैं, कवित्व का ह्रास हुआ है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ है।